समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान
खुशियों की खान।
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ सुंदर सी पंक्तियां किसी ने कही कि यदि आपके चंद मीठे बोल किसी का खून बढ़ा देते हैं तो ये भी रक्तदान है। यदि आप किसी की पीठ थपथपा देते हैं और उसकी थकान दूर हो जाती है तो ये भी श्रमदान है। आप अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लेते हैं जितना आपको चाहिए, आप उसे व्यर्थ नहीं करते, तो ये भी अन्नदान है। और इन दानों के साथ एक सबसे बड़ा दान होता है मित्रों, वो है जीवन दान, जो एक डॉक्टर पेशेंट को देता है, मरीज को देता है। और इस दान को करने वाली और अपनी जीवन का भी दान, मानवता की सेवा अर्थ कर देने वाली डॉक्टर हिना मुकादम जी हमारे साथ हैं, जो माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में सीनियर क्लिनिकल एसोसिएट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और साथ ही साथ न केवल लोगों के तन को ठीक कर रही हैं लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से लोगों के मन को भी तंदुरुस्त कर रही हैं। तो आइए ऐसी डॉक्टर साहिबा का, जिन्होंने अपना जीवन सचमुच मानवता की सेवा अर्थ अर्पित कर दिया है, जीवन दान देने वाली ऐसी डॉक्टर का हम अभिनंदन करते हैं आज के समाधान कार्यक्रम में। आपका पुनः डॉक्टर हिना बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक प्रश्न मेरे जेहन में कल से उठ रहा था जब हमारी चर्चा समाप्त हुई उसके पश्चात से, कि मुंबई और पुणे में आपकी पढ़ाई हुई है, परवरिश हुई है, इतनी चकाचौंध वाली लग्जरियस लाइफ को छोड़कर माउंट आबू एक छोटा सा स्थान है, छोटा सा गांव है, यहाँ आने का निर्णय आपने कैसे लिया?
जब हम पहली बार यहाँ पे 7 साल पहले आए थे तो कई लोगों ने ये प्रश्न हमसे पूछा कि मुंबई छोड़ के आप यहाँ पे गांव में आ गई
जी।
तो जैसे आपसे आपने कहा कि चकाचौंध और सुख सुविधा, सुख सुविधा एक्चुअली क्या है उसको जानना जरूरी है ना। जब हम मुंबई में अपना ड्यूटीज करते थे तो ट्रैवलिंग में इतना समय जाता है वहाँ पर, और ट्रैवलिंग में इतनी हमारी पूरी जो एनर्जी है वो निकल जाती थी, और इतनी जो चीज़ हमको चाहिए वो हमको वहाँ पर नहीं मिलती थी। जो खुशी चाहिए, जो शांति चाहिए, वो वहाँ पर हमको नहीं मिली। जबकि हम सोचते हैं कि मुंबई जैसा शहर, मल्टीप्लेक्स,
वहाँ तो सभी लोग जाना चाहते हैं,
मॉल्स, हाँ सब लोग सोचते हैं कि मुंबई देखे मुंबई देखे, लेकिन हमारा कुछ और ही था कि मुंबई में ही हमारा जन्म हुआ, पले बड़े, सारी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ हुआ वहाँ पर। लेकिन जैसे है ना कि किसी ने नज़दीक से उस दुनिया को अगर देखा है तो उसको पता है कि उसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है वहाँ रहने के। और जब हम माउंट आबू में आए तो माउंट आबू में इतना एकांत मिला जो हमको चाहिए था हमेशा से, एक सॉलिट्यूड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो नेचर है, और यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज का, तो मेडिटेशन हमारे लिए सबसे पहले तो बड़ा अट्रैक्शन था.
जी,
और जैसे कि वो खुली हवा में बैठ के मेडिटेशन करना, ये सब हमारे लिए बहुत आकर्षण वाली चीज़ थी यहाँ की.
जी,
और दूसरी बात, हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल है, और जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और बचपन से ही हमारे मन में एक इच्छा थी कि हम गरीबों की सेवाएं करें. तो मुंबई तो बहुत कमर्शियल है, और वो वहाँ पर हमें वो चांस शायद कभी नहीं मिलता. तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी थी हमारी कि एक सेवा भी होगी और जो हमको चाहिए वो भी हमको मिलेगा. इसलिए हमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके हम यहाँ पे आ गए.
जी, सचमुच मानव सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। धन कमा लेना या फिर एक अच्छे ओहदे तक पहुंच जाना, वो भले ही अपने आप में भौतिक जगत का एक सम्मान लगता है, लेकिन जब हम किसी गरीब की असहाय की सेवा करते हैं तो उसका सुख एक अलग ही होता है। तो
जी
क्या कभी इतने वर्षों में आपको ऐसा लगा कि यहाँ आई हूँ तो ये मेरा सही निर्णय था, कहीं कोई वो जो चकाचौंध वाली बात है फिर से थोड़ी आकर्षित तो नहीं करती कि थोड़ा जाऊं थोड़ा टेस्ट
नहीं, बिल्कुल
करूं?
नहीं. अभी भी हम अगर मुंबई जाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, तो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाते, और हमको ऐसा लगता है जल्दी से वापस आओ. क्योंकि इच्छा होती है सेवा की, और वो जो खुशी मिलती है सेवा के बाद, तो वो बहुत अच्छा लगता है. और एट द सेम टाइम हमको यहाँ पे अपने लिए भी टाइम मिलता है. एक और बात हमने सीखी स्पिरिचुअलिटी में आके, कि वैल्यूइंग द सेल्फ कितना इम्पॉर्टेंट है. और मुंबई जैसे शहर में आप भाग दौड़ कर रहे हो, लेकिन अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो. हम जाते हैं कि हम खुशी हमारे घर पे लाए, लेकिन हम नहीं ला पाते. और स्पिरिचुअलिटी में हमने सीखा कि पहले सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट है, और फिर दूसरों का केयर, नहीं तो दो पेशेंट्स हो जाएंगे फिर, मैं भी और पेशेंट भी. तो ये सीखा हमने अपने जीवन से कि सेल्फ केयर, अपने आप को वैल्यू करना.
जी, ये बहुत सुंदर बात है कि हम दो पेशेंट एक दूसरे को कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले मैं खुद ही ठीक हो जाऊं। एक सुंदर और महत्वपूर्ण सी बात इस बात के संदर्भ में जानना चाहूंगा, लोग भागे तो जा रहे हैं, चाहे आप वहां भी देखें तो चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो या डिफरेंट प्रोफेशन में हो, अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हैं कि हम खुद को समय दें। कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, कितना जरूरी आपको लगता है कि हम खुद को वक्त दें तो शायद जीवन बेहतर हो सकता है, सुख शांति से संपन्न हो सकता है?
एक्चुअली हम सब रीज़न देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समय निकाल सकते हैं. और हम बाहर क्यों जा रहे हैं? खुशी लाने के लिए, जैसे मैंने कहा. तो आपको जब खुशी चाहिए, तो अपने आप को भी समय देना पड़ेगा. और हम ऐसे नहीं कह सकते हमेशा से कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं. क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में एक डॉक्टर अलग अलग 5-6 हॉस्पिटल से अटैच होते हैं, और रात के 12 बजे घर पे पहुंचते हैं. ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सुबह 8 बजे निकलेंगे और रात के 12 बजे पहुंचेंगे. तो कैसी लाइफस्टाइल जी रहे आप? एक डॉक्टर होकर इस बात को नहीं समझ पा रहे, तो फिर पेशेंट को आप क्या कहेंगे, है ना? अगर आप पेशेंट को कहेंगे कि वॉकिंग करनी है, ऐसे आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, ये सब हम पेशेंट को सिखाते हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं कर पा रहे.
जी,
तो हम इस बात को समझें कि जो हम कह रहे हैं पहले हम करके दिखाए वो. तो कहीं ना कहीं हमको टाइम निकालना ही पड़ेगा.
जी, अपने शरीर के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए
जी.
इस कदर जिस कदर आपने कहा। और सचमुच ऐसी हैक्टिक लाइफ दिखाई देती है, और फिर एक समय के पश्चात देखने में आता है कि फिर बहुत सारी बीमारियां हमारी खुद के अंदर आ जाती हैं और हम उससे
जी
परेशान होते हैं।
जी
आप कैसे बैलेंस रखती हैं डॉक्टर हिना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में? क्योंकि एक बैलेंस सभी नहीं रख पाते हैं, कोई कोई पलड़ा जो होता है बहुत भारी हो जाता है, तो कैसे बैलेंस रखें? आपके अनुभव से सबको क्या कहना चाहेंगे?
जैसे जो हमारी सेवा है ग्लोबल हॉस्पिटल में, हम इमरजेंसी में काम करते हैं, तो हम ऑन कॉल रहते हैं 24 आवर्स. कभी हमको रात में 2 बजे कॉल होता है, 1 बजे कॉल होता है, कभी हम दोपहर में कॉल होता है, कभी रात में, कहीं कहीं भी हमको कॉल आ सकता है. लेकिन हम रेडी रहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने स्पिरिचुअलिटी में सीखा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअली दे रहे हैं हम दूसरे को. और एक बहुत अच्छी भावना है कि देने में ही लेना है. तो बहुत खुशी मिलती है जब हम आके अपना समय देते हैं लोगों को. तो ये एक है. दूसरा, हमने रिसेंटली एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की थी, आइसनहोवर मैट्रिक्स. उसमें हमने सीखा उस एक्टिविटी में कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप बाद में कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेलीगेट करनी है दूसरों को, कौन सी चीज़ें हैं जो एलिमिनेट करनी है. जैसे ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये जो हम इस पर टाइम स्पेंड करते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो ये जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे इस छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो ये भी हमको एक इससे सीखने को मिला कि कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं इन सब चीज़ों का. तो वो ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस रखते हैं. दूसरा बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है, आप जब क्रिटिकल केयर में काम करते हो है ना, कभी कभार मॉब आ जाता है और फिर वो हमको चिल्लाएगा तो हम चुप बैठे, ऐसा होता है ना कि हम भी चिल्लाए, लेकिन बहुत समझ आ गई अभी कि रिलेटिव्स जो आते हैं ना वो बहुत दुख में आते हैं, कभी कभार उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और वो जिस तरह से बोलेंगे कि हमारे पेशेंट को देखो ठीक होना चाहिए, हम आगे कहीं लेके जाए क्या, इसको बुलाओ इसको बुलाओ, ये सब बहुत प्रेशर होता है माइंड पे उस समय। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से हमने सीखा कि कैसे अपने आप को स्टेबल रखना, सामने वाले को जानना, सामने वाले को समझना कि वो भी ऐसा क्यों बोल रहा है, तो ये चीज़ हमें बहुत बैलेंस रखती है। और दूसरा कि जैसे कि हमारे पास कोई वेस्ट थॉट्स नहीं होते दिन भर, तो हम मन से थकते नहीं हैं, इसलिए हमारी नींद भी रिकवर हो जाती है, क्योंकि हम जैसे ही बेड पर सोते हैं हमको नींद आती है। लोग सोचते हैं ना कि इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, कि नींद ही नहीं ठीक से हो
जी
रही होगी,
जी बार बार
तो
कोई
वो
उठा
भी,
देता
हाँ वो भी हम चैलेंज लेके उसको भी
जी,
रिकवर कर लेते
लेकिन
हैं।
लगता है कि ये सबकी दुआएं इतनी मिलती हैं आपको कि आपको बहुत सुंदर नींद आ जाती है। जी, क्या लगता है कि ये जो आप अपनी दिनचर्या रखती हैं, कि क्या हम सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन करें या रात को करें, या बीच बीच में कुछ ऐसा वक्त आप निकालती हैं? क्योंकि जो एक बात हम लोगों की चल रही है कि लोग समय की बात हमेशा कहते हैं कि वक्त हमें नहीं मिल पाता है, क्या सजेस्ट करेंगे कहाँ कहाँ से टाइम चुराया जा सकता है और थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन किया जा सकता है?
हमें एक बात याद आ रही है, हमारे पापा हमको हमेशा कहते थे कि बच्चे जब भी आप बस के लिए खड़े रहो, टैक्सी के लिए खड़े रहो, तो हमको दुआ पढ़ने के लिए कहते थे वो, जिसको कहते हैं दुरूद शरीफ, और हम वो पढ़ते थे। और वो आदत हमको अभी भी है कि हम अगर बस के लिए खड़े रहेंगे या टैक्सी के लिए खड़े रहेंगे या चल रहे होंगे, तो पापा ने हमको सिखाया था कि बच्चे वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और खुदा को याद करना है। तो ये हमारे में बचपन से था। तो जब हम इधर भी आए, तो जैसे कि इधर भी मेडिटेशन करने को कहते हैं, और ऐसा कोई समय नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हमारे पास एक मॉर्निंग का समय और एक शाम का समय फिक्स होता है, जब हम लोग साथ में ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। परंतु हम समय को चुरा सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हम बस के लिए खड़े हैं, या दो पेशेंट के बीच में एक समय होता है जब आप थोड़ा सा कुछ सेकेंड फ्री होते हो, उस समय आप मेडिटेशन पहले आपको बैठ के करना पड़ेगा, फिर आपको आदत होगी कि ये छोटे
चलते
छोटे
हुए
समय
कर
पे कर
सकते
सकते हैं।
हैं।
जब हम भोजन खाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भोजन मौन में खाओ, ये तो मेडिकल में भी सिखाया जाता है कि आपको ये इतनी बार च्यू करके खाना है, लेकिन लोग आज ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। तो वो समय है, उस टाइम पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि हम कहते हैं जैसे अन्न वैसा मन, तो वो एक समय है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, है ना। आजकल हम वॉक करते होते तो कभी कभी ग्रुप्स में जाते हैं वॉक करने, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम अकेले अपने आप को समय दें, और अकेले जब हम निकलते हैं तो एक सेल्फ टॉक करके निकल सकते हैं, तो ये सब समय
जी, आपने तो काफी सारा स्थान हमें गिना दिया कि यहाँ
जी
यहाँ हम मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं। अब तो हमारे पास लगता है कि बहुत वक्त रहेगा इसके लिए। लंबे समय से आप पेशेंट्स को देख रही हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो मेडिटेशन करते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे, तो क्या आपको अंतर दिखाई देता है उन लोगों में कि जो मेडिटेशन कर रहा है उसकी रिकवरी कहीं जल्दी हो पा रही है और जो नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है इसमें?
जैसे मेडिटेशन करते हैं तो बहुत खुश रहना सीख लेते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेते हैं, और कई ऐसी रिसर्चेज है जैसे जो बताती हैं कि आप जब खुश रहते हो तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होती है, और कई ऐसी रिसर्चेज है जो बताती है कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है जब आप खुश रहते हो, और कहीं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये सब ठीक होते हैं जब आप खुश रहते हो, उन्होंने ग्रुप्स पे स्टडी की है। तो यही हम देखते हैं, जिस क्योंकि हम ग्लोबल हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस है कि हम दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं। तो देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी अगर कोई वीके पेशेंट, ब्रह्मा कुमारीज के कोई फॉलोअर को हो गई, तो वो फिर भी इतना खुश रहते हैं। रिसेंटली कुछ साल पहले हमारे पास एक भाई थे जिनको स्टमक कैंसर हो गया था, और उनको पता था कि 6 महीने बाद ये शरीर छोड़ेंगे, लेकिन उनसे हमें इतना सीखने को मिला, वो इतने खुश रहते थे, यहाँ तक कि उनसे खाना भी नहीं खाया जाता था, लेकिन वो खुश रहते थे, बस उनको देख के ही सब खुश होते थे। ऐसे ही डायलिसिस पेशेंट्स जो होते हैं, वो कितने बीमार पड़ते हैं बार बार, उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, कभी उनका जो फिस्टूला होता है जहाँ से डायलिसिस होता है वो फेल हो जाता है, तो बहुत दुख में होते हैं, रिलेटिव्स भी वैसे ही दुख में होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो मेडिटेशन करते हुए जो डायलिसिस पेशेंट्स आए, उनमें भी हमने देखा कितने स्टेबल, कितने स्टेबल, इतने कॉम्प्लिकेशंस के साथ स्टेबल कि हमने भी सोचा कि ये कैसे, इतनी टॉलरेंट पावर थी उनके पास,
जी,
बहुत सुपर्ब।
बिल्कुल, मतलब ये जो मेडिटेशन है या ईश्वर का ध्यान है, उनसे जब हम जुड़े रहते हैं ऊपर वाले से, खुदा से, तो शायद हमारे अंदर उनकी वो शक्तियां आने लगती हैं, और
जी
हमारी जो सोचने का जो तरीका है या
जी
फिर रिएक्ट करने का तरीका है, पूरी तरह से बदल जाता है।
हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। एक्चुअली
जी।
परिस्थितियों हर एक के जीवन में आती है ना, लेकिन जो टॉलरेंस पावर डेवलप हो जाती है वो इस मेडिटेशन से होता है।
क्या इस मेडिटेशन से बीमारियों को ठीक होते हुए भी आपने देखा है कि कोई ऐसी तकलीफ थी और फास्ट इम्प्रूवमेंट तो होता है, वो तो हम देखते हैं, या पूरी तरह से जहां से व्यक्ति निराश भी हो जाता है उसे भी आपने ठीक होते हुए देखा है?
कई पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और जो मेडिटेशन करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि थायराइड जैसी बीमारी थी उनको और उन्होंने मेडिटेशन किया और है ना खुदा से वाइब्रेशंस लिए, परमात्मा से वाइब्रेशंस लिए और अपने थायराइड ग्लैंड पे दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनके जो रिपोर्ट्स है वो सब नॉर्मल हो गए।
वाह,
ऐसी कई डिजीज़ लाइक एक पेशेंट ने हमको कहा था पीसीओडी था उनको, और पीसीओडी तक उनका ठीक हो गया और उनको जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब नॉर्मल हो गई। तो ऐसे हमारे पास कैट प्रोग्राम होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो प्रोग्राम होता है, हार्ट ब्लॉकेजेस के साथ पेशेंट्स आते हैं और उनको भी एक लाइफस्टाइल सिखाई जाती है सुबह से लेकर रात तक, उसमें मेडिटेशन भी एक पार्ट है और कहीं ऐसे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं उसमें। ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी सिखाया जाता है कि इसको एक्चुअली मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि बैठो ध्यान में और हम कहीं और है, ऐसे नहीं है। उस खुदा से वाइब्रेशन लेना, और उनको सिखाया जाता है कि कैसे अपने पैनक्रियास पे वाइब्रेशंस डालो और कैसे उसको कमांड दो, कैसे ऑटो सजेशंस दो, इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो उससे कहीं रिकवरी होती है।
जी। और कई बार मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मान पाती कि ऐसा हो सकता है क्या, ब्लॉकेजेस के लिए तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी एक चमत्कार ही है कि मेडिटेशन करके या खुदा से हम जो बातें करते हैं या उनकी वाइब्रेशन लेते हैं, और जो भी आपने ऑटो सजेशन की बात कही, उन सबसे भी चीजें ठीक हो सकती
जी
हैं। तो
जी
जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, डॉक्टर हिना, आप क्या कहेंगे, चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, वो किस प्रकार से ईश्वर का ध्यान किया करें ताकि उन्हें भी अपनी इस तकलीफ में मदद मिले?
वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, उनको पहले टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। तो वो कहीं नज़दीक के कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं, और जो राजयोग का मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसको साथ में इंक्लूड करना है। ऐसे नहीं कहेंगे हम कि मेडिसिन्स बंद कर दो, ये भी एक बुद्धिमानी की बात नहीं होंगी।
बिल्कुल
तो वो करते हुए इसको इंक्लूड करिए आप, और फिर आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है और कैसे हीलिंग होती है। जैसे हमको 8 साल पहले थायराइड हो गया था और हमारे लेवल्स बहुत आगे रहते थे, तो हमने भी मेडिटेशन किया और उसको कैसे कंट्रोल में हम लेके आए, जबकि हमको चालू है मेडिसिन लेकिन बहुत कम डोज पे चालू है। हम ओपनली इस बात को बता रहे हैं कि कैसे हमने मेडिटेशन से कंट्रोल किया। इनफैक्ट कभी कभार हमको माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं, तो उस माइग्रेन के हेडेक्स में भी किसी को पता ही नहीं चलता कि हमको हेडेक हो रहा है, हम हंसते ही रहते हैं उसके साथ। जबकि माइग्रेन कोई कोई हमको ऐसे कहते हैं कि आप कैसे सहन कर सकते हो, हमको तो ऐसा लगता है कोई हमारे सिर पे हाथ रखे, कोई हमको प्यार करे, इतना हेडेक होता है।
जी।
लेकिन हाँ, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कहते हैं मैडम ऐसे कैसे आपको, तो वही चमत्कार होता है कि मेडिटेशन करते हैं तो टॉलरेंट पावर बढ़ जाती है और जल्दी ठीक होता है वो।
जी। सच में आप अपने अनुभव से ये चीजें रख रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप खुद भी इस मेडिटेशन का प्रभाव अपने जीवन पर देख रही हैं और साथ ही वो परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। एक जीवन शैली परिवर्तित हो गई है तो उसके कारण भी लगता है कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये 3 सूत्र या ये 5 सूत्र आप अपने जीवन में अपना लो तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, या होंगे भी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे?
हमारी सारी समस्या चालू होती है जब हम दूसरों को देखते हैं और या कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या दूसरों की चीज़ों में अपनी नाक डालते हैं तो दुखी हो जाते हैं।
जी
तो एक क्लास हुई थी बीच में हमारी, जो फ्रेज़ है नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज, उसका मतलब है नन ऑफ माई बिजनेस। तो ये एक चीज़ अपने जीवन में हम अपना सकते हैं कि दूसरों को देख के दुखी ना हो, क्योंकि दुखी होंगे तो ज़रूर बीमार पड़ेंगे जल्दी। क्योंकि एक रिसर्च थी बीच में, उसमें कहा था कि अगर 3 महीना आप किसी भी दर्द को पकड़ के रखते हो तो डेफिनेटली कुछ महीनों में आपको कोई बीमारी आएगी ज़रूर। ये एक रिसर्च हुई थी बीच में। तो एक याद रखे, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। दूसरा, जैसे रिसेंटली एक हैप्पीनेस डे था ना, 20th मार्च को
जी।
इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, तो उसमें एक हमने स्पिरिचुअल एक्टिविटी करवाई थी, उसमें से एक दो चीज़ें बहुत अच्छी है जो मैं मेंशन करूँगी। एक भाई ने कहा कि मैं जीवन में याद रखूँगा, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और उसका मतलब है कि मैं खुश रहूँगा चाहे कुछ भी हो
कुछ भी हो
जाए
जाए।
जीवन में, है ना। तो ये एक याद रखे अपने। और तीसरी बात कि जीवन में जो भी परिस्थिति आई है वो पास हो जाएंगी, तो दिस शैल ऑल्सो पास, इसको याद रखते हुए हम आगे बढ़े।
जी, तो मतलब जीवन इससे बहुत ही खुशहाल रहेगा और हम अपनी तकलीफों से भी मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि मूल रूप से मन से व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है। और डॉक्टर्स भी आजकल ये कहते हैं कि साइकोसोमेटिक हैं जो भी डिजीजेज हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे इस चीज के लिए भी आप कहेंगे कि मन जो है वो तंदुरुस्त रहे हमेशा, क्योंकि हम कई बार खुश रहना चाहते हैं लेकिन वो खुशी रह नहीं पाती है।
क्योंकि हम खुशी साधनों में ढूंढते हैं, या हम थिएटर में जाके ढूंढते हैं, या हम वस्तुओं में ढूंढते हैं, और फिर दुखी होते हैं जब वो नहीं मिलती है। तो लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि खुदा जो है वो सागर है, और अगर आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपको सब कुछ उससे मिल जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये मेडिटेशन एक तरीका है जो आपको खुश रखेगा। और जीवन में एक्सेप्टेंस, एक होता है स्वीकार करना। कई ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी जो हम बदल नहीं सकते, तो इंसान इस चीज़ को समझता ही नहीं और फिर दुखी होते जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में, हमको कभी ना कभी तो ये चीज़ को समझना ही पड़ेगा, और जितना हम स्वीकार करेंगे उतना हम खुश रहेंगे।
जी, हम स्वीकार नहीं करना चाहते कई चीजों को, ये बात तो सच है, और उसके कारण ही तकलीफ हमारी बढ़ती जाती है। मेडिटेशन में आप लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि हम खुदा से जुड़ जाते हैं, क्या उनकी मदद का कुछ आपको ऐसा सुंदर अनुभव है कि कई बार आपने कहा कि हड़बड़ी वाली स्थिति रहती है हॉस्पिटल में भी, कोई ऐसा केस था, कोई ऐसी परिस्थिति थी जबकि आपको लगा कि बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन है और सचमुच खुदा ने मेरी मदद किया करके?
सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल में होता है वो हमारे संस्कारों की टक्कर होती है। जब हम ऐसे सिचुएशन में काम करते हैं और हम कुछ ऑर्डर करेंगे और कोई नहीं करेगा, तो जब अब हम अपने आप को 9 साल पहले देखते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता था कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हमने कह दिया तो ये ऐसे होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो हमको बहुत गुस्सा आता था। लेकिन फिर जो उसकी मदद मिली हमको, हम लोगों को समझने लगे, हम समझने लगे कि वो अपनी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, और अगर हम चिड़चिड़े हो गए, दुखी हो गए, तो पेशेंट सफ़र करेगा। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। नहीं तो एक होता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, ये स्टाफ है, और
जी
फिर वो गुस्सा आना, तो वो
जी
गुस्से को अपने बहुत कंट्रोल में कर लिया, तो जो स्वभाव संस्कार की जो टक्कर होती उसी से पेशेंट सफ़र करता है एक्चुअली, या रिलेटिव कुछ बोल देगा तो उससे। तो वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जब हम क्रिटिकल केयर में काम करते हैं और कोई पेशेंट सीरियस होता है उनको
जी
देखते हैं तो। और दूसरी चीज़ हमको लगता है कि लोगों को सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब हम लोगों को सुनते नहीं हैं। तो हम एक कोर्स करवाते हैं यहाँ पर, विहासा, वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच। उसमें एक एक्सरसाइज हमने करवाई थी कंपैशनेट लिसनिंग, कि सामने वाले को सुनना, जो आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है।
बिल्कुल
तो वो चीज़ हमने सीखी कि कैसे उनके दुख को समझे, उनको क्या देना है मुझे, फिर तो ये हेल्प
आ
करता है।
जाता है। क्या ये क्वालिटीज आपको लगता है कि सचमुच ऊपर से खुदा ही भरता चला जा रहा
जी
है, और
जी
मैं तो ऐसी नहीं थी लेकिन अब पूरी तरह से मैं परिवर्तित होती जा
जी जी ज़रूर
रही
ज़रूर, ये उसी की मदद है जो हम इतना परिवर्तन हो गए, वरना ये
हूँ?
हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पर।
जी
और मतलब जो खुदा की मदद मिली उसी को हमने जीवन में लाया, ये हमारा कुछ है नहीं,
बिल्कुल,
ये उसी की मदद है।
ब्रह्मा कुमारीज भारतवर्ष में तो अलग अलग धर्म के लोगों के साथ कार्य कर रही हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई बहने हैं या क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, क्या आपके ऐसे भी परिचय में रहे हैं जो विदेशों में भी हैं और वहां पे भी ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं
जी
हो रही हों?
जी जी ज़रूर। अभी दिसंबर में ही एक रिट्रीट थी माउंट आबू में, IPI रिट्रीट, और गल्फ कंट्रीज से, मुस्लिम देशों से लोग यहाँ पर आए थे मेडिटेशन सीखने के लिए। उसमें सब अरब्स भी थे और सब मुस्लिम बहनें थी उसमें, और भाई भी थे मुस्लिम्स। और हम जब उनसे मिले तो हमको इतना अच्छा लगा, और वो पूरा हिजाब वो सब पहन के घूम रहे थे, लेकिन इतनी छोटी सी जगह से थे, इतनी छोटी जगह है ये माउंट आबू, और ये इतने संपन्न देशों से आए थे, उनको कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन जो शांति उन्होंने एक्सपीरियंस की यहाँ पर, और इतने खुश होके गए, और लास्ट डे पे तो वो सब रो रहे थे, और अभी
जी
भी वो वहाँ पे सेंटर्स पर कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, गल्फ कंट्रीज़ में, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, सब जगह पर लोग अभी इस चीज को पहचान चुके हैं
जी जी
कि
तो वहाँ भी मुस्लिम भाई बहनें
आते
सेंटर्स पे
हैं,
आते हैं और मेडिटेशन करते
यस, वो
हैं।
सेंटर्स पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और फिर अपने घर पे वापस जाते हैं। तो देखिए बाहर के लोग इतना फायदा उठा रहे हैं।
तो देश वाले भी जरूर फायदा
जरूर
उठाए। चलिए,
जरूर
आपकी ये मंगल कामना है, शुभकामना है, और ब्रह्मा कुमारी तो सचमुच सभी को खुला निमंत्रण देती हैं कि
जी
सभी आए और जिस शांति की तलाश है उस शांति को प्राप्त करें, उस खुदा तक भी पहुंचे जिसे वो पाना चाहते हैं। चलिए डॉक्टर, इन आज के लिए पुनः आपने इतने प्यार से हमारे सभी दर्शकों के सामने प्यारी प्यारी चीजें रखी हैं, जरूर वो अपने जीवन में लाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, ऐसी हम कामना रखते हैं। यहाँ आने के लिए, सुंदर अनुभव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू ओम शांति।
मित्रों, बचपन में हम सब एक गीत सुना करते थे, आप सबने भी सुना होगा, कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सचमुच इंसानियत का धर्म बहुत सुंदर धर्म है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, अपनत्व ही अपनत्व है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब अध्यात्म हमारे जीवन में हो, जब सभी को हम रूह की नज़र से देखें, आत्मा की नज़र से देखें कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। जैसे हम कहा भी करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो ये नाता किस रूप में भाई भाई का? आत्मिक नाता ही तो है ना, जो हमें एक सूत्र में बांधता है। और ये तब भी संभव हो पाता है जब हम खुदा को भी सही रूप में जानते हैं, परमात्मा को सही रूप में जानते हैं, कि हम उस एक मालिक के बंदे हैं, उस एक पिता की संतान हैं। तो फिर आपस में क्यों मनमुटाव, आपस में क्यों लड़ाई झगड़े, क्यों ना उसे सही रूप में जान करके हम आपस में प्रेम शांति और सौहार्द से रहें। न केवल बाहरी सुकून, लेकिन भीतर का भी जो सुकून और शांति है वो सचमुच इस अध्यात्म से और इस ध्यान से हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना इसकी ओर बढ़ें, जीवन को शांति से संपन्न करें और समाज में भी शांति और खुशहाली का माहौल बनाएं। बने रहेगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान समाधान।